जिन संतों का दर्शन करने से हे वशिष्ठ जी, जिन साधु संतों का दर्शन करने से संसारी लोग पावन होते हैं, पवित्र होते हैं, वे संत भी अंतर्यामी परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा प्रसाद पाकर पावन और पवित्र होते हैं। तुम उसी परमेश्वर के ध्यान में तल्लीन होते जाओ। ऊंडी शांति, मधुर शांति ही भोजो, पावन शांति ही। ऊपर उठते जाओ, नाभि केंद्र से धीरे धीरे ऊपर उठते जाओ। मूल बंद उड़ान बंद करते हुए जैसे हेलीकॉप्टर धरती छोड़कर आकाश की ओर ऊपर उठता है, ऐसे ही मूल बंद के धक्कों से अपनी जीवन शक्ति को जीवनदाता की तरफ धकेलो। अपने मन को भगवान के परम ऐश्वर्य, परम मंगलकारी, शांतिदायी स्वभाव के तरफ ले चलो। मधुर शांति, ऊंडी शांति, परमेश्वरी शांति, नाभि से थोड़ा ऊपर हृदय कमल की ओर, हृदय विकसित होता जाए। अपने इष्ट देव को, अपने गुरुदेव को, गुरुदेव को स्नेह करते जाओ। उनकी कृपा को, ईश्वर की कृपा को अपने हृदय में विकसित होने दो। राम नाम के माधुर्य में तल्लीन होते जाओ। ओम राम, ओम गुरु, ओम गुरु, ओम राम। रग रग पावन होती जाएगी, जो ज्यादा आवाज करते पड़ोसी लोग अपना फर्ज पालेंगे। मधुर शांति, मोह माया को तिलांजलि। मोह तुम्हें रुलाता है, अहंकार तुम्हें सताता है, लोग तुम्हें फंसाता है, लेकिन भगवान का ध्यान तुम्हें मुक्त करता है। मनुष्य पैदा हुआ था, किसी को साथ नहीं लाया था, मरता है तो किसी को साथ नहीं ले जाता, बीच में इतना मोह से फंस जाता है, रुपयों के लिए रोता है, परिवार के लिए तड़पता है, उस माया में अपने को उलझा देता है। तुम मायापति के ध्यान में लग जाओ, मायापति के शरण जाने का मतलब तुम अंतरात्मा में गोता मारो। मन के फुरने से माया का विस्तार होता है, मन निष्फुर नारायण में तल्लीन होने से माया का प्रभाव लीन हो जाता है। तरंगे उछलते हैं, मोजा उछले छे त्यारे मारी नाखे पछाड़ी दे छे, पण शांत जड़मा चित्ता सुईरो कलाको सुधी काई ना बगड़े, एम शांत स्वरूप आत्मामा तमारा मन ने पोटवा दियो। बेड़ो पार थई रह्यो छे मननो, मनना विकारो दूर थवा लागशे, बुद्धिमा सद्गुणनो विकास थशे, रक्तना कण पावन थई रह्या छे, हृदय मधुर थई रह्यो छे, भगवानना मधुर ऐश्वर्यमा, भगवानना माधुर्य स्वभावमा, भगवानना कारुणी स्वभावमा, भगवान के उस मधुर स्वभाव में, भगवान के दिव्य ऐश्वर्य में, भगवान की परम कृपा में, भगवान की परम रहमत में तल्लीन होते जाओ। तुम कई जन्मों के सताए हुए हो, कई युगों से तुम सताए गए हो, इस जन्म में भी तुमको मन ने विकारों ने खूब सताया है, अब तुम निर्विकार नारायण के सुख में पहुंचो। कब तक संसार में तुम अपने को सताओगे, कब तक तुम मुख में अपने को फंसाओगे, कब तक विकारों में अपने को तपाओगे, कब तक मन की कल्पनाओं में अपने को उलझाओगे। अब तो गुरु प्रसाद में, अब तो परमात्मा के प्रसाद में, अब तो ईश्वर के आनंद में, अब तो परमेश्वर की शांति में अपने को फेंक दो, परमेश्वर के गोद में जो करुणामय है, जो प्राणी मात्र का सुहृद है, जो तुम्हारा सच्चा हितेशी है, जो तुम्हारा पक्का मित्र है, जो तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी मैत्री नहीं छोड़ता, अगले जन्म का बाप और दोस्त तुमको छोड़ दिए थे, अगले जन्म के मकान और परिवारों ने तुमको छोड़ दिया, इस जन्म का परिवार भी तुम्हें एक दिन छोड़ देगा, इस जन्म का परिवार तुम्हें शमशान में छोड़ाए, उसके पहले तुम अपने को राम में पहुंचाते जाओ। संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभी हो साथ, कोई न निभी हो साथ, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभी हो साथ, कहना निक यह विपत में टेक एक रघुनाथ, यह तन काचा कुंभ है फूटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े गर्व करे वे गंवार, ये शरीर काचा कुंभ है पड़ोसी लोग चुप करा दिया करे, पड़ोसी लोग चुप कराने का कर्तव्य परम ऐश्वर्यशाली, हे परम कृपालु, हे परमेश्वर, हे मेरे अंतरात्मदेव, हे मेरे भगवान, हे मेरे दाता, हे मेरे सुहृद, हे मेरे परम हितकारी, प्राणी मात्र के परम हितकारी मुक्ताराम, यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरा, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छसि। मैं सबके हृदय कमल का साक्षी चैतन्यात्मा, यज्ञ और तपसा का फल मैं ही भोगता हूँ, प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूँ। ऐसा जो मुझे जानता है वह आत्म शांति लाभ कर लेता है, पवित्र शांति, मधुर शांति, अनुपम शांति, ईश्वरीय शांति। तुम्हारी एक एक सेकंड महापुण्य पुंज अर्जित कर रही है, तुम्हारा एक एक क्षण परमेश्वर के प्रसाद से पावन हो रहा है। शांति, मधुर शांति, ईश्वरीय शांति, शांति के समान कोई तप नहीं, ध्यान के समान कोई तप नहीं, परमात्मा ध्यान के समान कोई स्नान नहीं, परमात्मा ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं। तीर्थ में तुम्हारा शरीर नहाता है, ध्यान में तुम स्वयं परमात्मा में नहाते हो। यज्ञानाम जप यज्ञोऽस्मि, यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ भगवान कहते। ध्यान करते करते, जप करते करते तुम ऐसे यज्ञ कर रहे हो कि वो जप और ध्यान से तुम्हारी वृत्ति भगवताकार होकर जगत के सारे बंधन मिटने लगते हैं। तुम चतुर बनकर ध्यान न करना, तुम तो निर्दोष नन्हे होकर भगवान के ध्यान में तल्लीन होना। अगर ध्यान नहीं लगता तो उसे कह दो कि प्रभु तेरा ध्यान नहीं लगता, मेरे मालिक, मेरे परमेश्वर, तेरे प्रेम में मन नहीं डूबता, मन तो संसारी विकारों में डूब रहा है, अब तू आके संभाल, तू आकर मुझे पकड़ के तेरे प्रेम में डूबा, तेरी शांति में डूबा, तेरे संतों के उस प्रसाद में डूबा। संसार में तो हम युगों से डूबते आए, अब तू अपनी कृपा में डूबा हे प्रभु। धन दौलत यहाँ पड़ा रह जाएगा, मौत आकर हमें झपेटने उसके पहले हम तेरी अमरता में डूबे रहे। संगी साथियों को मौत ले जाती है, हमको भी मौत ले जाए, सब पड़ा रह जाएगा, उसके पहले सबका सब उपयोग करें। और जिसका सब ऐसे लोगों की संगति से भी भक्त की भक्ति ढीली हो जाती है। भक्त संसारी लगता है लेकिन वो संसारी होते हुए भी संसारी नहीं होता, भक्त होता है। भक्त की मान्यता होती है कि सब भगवान का है, सब भगवान का है और सब में भगवान है और मैं उसका दास हूँ, मैं उसका सेवक हूँ। भगवान मेरा अहंकार मिटाने के लिए अपमान करवा देते हैं, मेरा विषाद मिटाने के लिए मित्र दे देते हैं, मेरा मोह मिटाने के लिए संसार की चीजें कम कर देते हैं, मेरा दुख मिटाने के लिए कुछ दे देते हैं। भगवान जो करते मेरे हित में करते हैं। कुछ पतंग ये दिए पर कुर्बान हुए जा रहे थे, दयालु पुरुष ने दिया बुझा दिया। अब पतंग ये कहने लगे कि ये कैसा आदमी है, हमें मजा आ रहा था, दिया बुझा दिया, हमारा मजा का साधन लूट लिया। वो मूर्ख पतंग ये है। दूसरे पतंग ये कि अच्छा हुआ हम इसमें जल के मर रहे थे, उस दयालु पुरुष ने बुझा दिया, वाह प्रभु तेरी दया। ऐसे मोह के दिए में हम लोगों की जिंदगी स्वाह हो रही है। जिस वस्तु में मोह है, जिस व्यक्ति में मोह है, जिस संबंध में मोह है, उस संबंध को भगवान ने जरा हिला दिया, हटा दिया, तो भक्त बोलेगा कि भगवान हमारा मोह तोड़ने के लिए किया है। संसारी उसको याद कर करके रोएगा, लेकिन आधा भगत होगा आधा संसारी होगा तो कभी तो रोएगा कभी बोलेगा तेरा भाणा मीठा लागे, शुक्र थे जेका जोड़ी सा वाह वाह। वो अर्ध भगत धीरे धीरे पक्का भगत बन जाएगा। वो कहेगा कि तेरे फूलों से भी क्या प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, क्यों कि तू प्राणी मात्र का सुहृद है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छसि। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ, ऐसा जो मेरे को जानता है वो शांति पाता है, क्योंकि भगवान जो करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं, बुरा कभी नहीं करते। बच्चे को माँ नहलाती धुलाती साबुन से, गर्म पानी से नाक पोंछती है दबाकर, बच्चे को लगता है कि खराब है लेकिन वो माँ बच्चे को नहीं सता रही, बच्चे की मैल निकाल रही है। ऐसे हमारे जीवन में जब उथल पाथल होती है, कच्चा संसारी होता है तो उथल पाथल का फरियादी गुनाहगार किसी को मानता है या भगवान को मानता है। ऐसे भगवान को क्या माने कि मेरा ये कर दिया वो कर दिया। संसारी ऐसी फरियाद करता है लेकिन भक्त कहेगा कि जे थयो सारा माटे थयो छे, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है, हमें भले पता नहीं लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे की यात्रा ऊंची होने के लिए होता है। भलाई के सिवा और कुछ नहीं होता है। जो हो गया वो अच्छा हो गया, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो अच्छा होगा, ऐसी मान्यता अगर है तो आदमी भक्त है। मन चाहा काम हुआ खुश हो गए, मन चाहा नहीं हुआ तो दुखी हुए, तो आप भगवान के भगत नहीं हुए, आप अपना मन रूपी गुलाम के भगत हैं, आप अपने मन के नौकर हैं। आपका नौकर को अच्छा लगा तो आप राजी हो गए, आपके नौकर को अच्छा नहीं लगा तो आप दुखी हो गए। अगर आपके स्वामी को राजी अच्छा लगता है उसमें आप राजी हैं तो आप भगवान के भगत हैं, और मन को अच्छा लगता है उसमें आप राजी हैं तो आप गुलाम के भगत हैं, नौकर के भगत हैं। तो संसारी गुलाम का नौकर होता है और भक्त भगवान का भगत होता है। उस भगत में भी तीन प्रकार होते हैं। वे भगत पहले होते हैं वैदी भक्ति करते हैं। वैदी भक्ति कुल परंपरा से मिलती है, जैसे यज्ञ याग जप तप सेवा स्मरण भगवान को भोग लगाना आदि, भगवान को नैवेद्य लगाना, भगवान का समझ कर पाना, भगवान के जन समझ कर उनसे थोड़ा व्यवहार करने की कोशिश करना, उसको वैदी भक्ति कहते हैं। वैदी भक्ति मजबूत होती है तो फिर गौणी भक्ति शुरू होती है, भगवान के गुण लीला प्रहलाद को भगवान ने ऐसी ऐसी मुसीबतों से बचा दिया। भगवान स्तंभ से भी प्रकट हो सकते हैं। द्वारकाधीश करके पुकारती है द्रौपदी और भगवान साड़ी का रूप ले सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े बलिष्ठों के तरफ द्रौपदी देखती है लेकिन कोई संगी साथी मदद नहीं करता। जब सबसे निराश होकर सच्चे हृदय से भगवान को पुकारती है भगवान साड़ियों का रूप ले सकते हैं। भगवान थंब में से प्रकट हो सकते हैं। भगवान जूठे बैर भी खा लेते अपने भगत के। भगवान अंतर में बैठकर प्रेरणा भी देते हैं। भगवान गुरु के द्वारा भी मार्गदर्शन देते हैं। भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान के गुण अपरंपार है। चारों तरफ से हम घिर जाते हैं तब भगवान कोई न कोई निमित्त करके हमारा मार्गदर्शन करते हैं। बुद्ध जब संसार से भगवान के तरफ चले थे और फिर मन ने धोखा दिया, छोड़ो ये भक्ति, क्या करना, आराम से घर में रहकर भजन करेंगे, निराश हो गए थे, व्रत किए, तप किए, ध्यान किए, कुछ हासिल नहीं हुआ, खामखा का समय खराब हो गया, इससे तो खाते पीते मजा करते। बुद्ध वापस लौट रहे, बुद्धत्व को पाए बिना वापस लौट रहे, किसी पेड़ के नीचे बैठे, देखता है कि एक छोटा सा कीड़ा अपना ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है, हवा का झोंका ने उसको गिरा दिया, फिर से चढ़ा, फिर से गिरा, फिर उसने चढ़ना चालू किया, एक पैर जमाता है फिर दूसरा पैर रखता है, इस ढंग के चलता है, ऐसे हवा का झोंका फिर गिराता है, ऐसे कई बार गिरा, आखिर वो कीड़ा चढ़ गया। बुद्ध कहता है कि ये कोई घटना नहीं, ये प्रेरणा है, उसकी प्रेरणा है। एक छोटा सा कीड़ा अपनी मंजिल चढ़ जाता है, पुरुषार्थ चालू रखता है, मैं तो मनुष्य हूं। भगवान कीड़े के द्वारा भी प्रेरणा दे देते हैं। तो कभी बिल्व मंगल जैसे महाकामी को वैशा के हृदय से भी प्रेरित करके वैराग्य दे देते हैं और बिल्व मंगल में से महान संत सूरदास बन जाता है, महामूर्ख में से महाकवि कालिदास बना लेते हैं भगवान। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान करुणामय है, भगवान ने मेरी गर्भ में रक्षा की, भगवान ने ये रक्षा की। ऐसे भगवान की तरफ जिसकी दृष्टि है और भगवान के गुण अनुवाद चिंतन श्रवण करता है, उस भक्त की वैदी भक्ति में से बदलकर फिर गौणी भक्ति बनती है। गौणी भक्ति जब मजबूत होती है तो फिर अनुरागात्मिका भक्ति भगवान के माधुर्य का प्रसाद पाता है। भगवान में अनुराग होता है, भगवान रस के सिवाय, भगवत ध्यान के सिवाय, भगवत ध्यान के सिवाय, भगवत ज्ञान के सिवाय, भगवत प्राप्त महापुरुषों के सिवाय उसका मन कहीं नहीं लगता। अनुरागात्मिका भक्ति भगवान में अनुराग, भगवान के प्यारे गुरु भाइयों में अनुराग, गुरु के दर्शन में परशन में अनुराग, उसको अनुरागात्मिका भक्ति प्राप्त होती है। जो सीधा ही अनुरागात्मिका भक्ति पाता है वो संसार में फिसल जाता है, लेकिन जो वैदी भक्ति करता है अथवा गौणी भक्ति करता है, गुण धर्म सत्कर्म आदि करते करते चढ़ता है, तो वो फिर अनुरागात्मिका भक्ति का प्रसाद पाकर आगे बढ़ता जाता है। जब अनुरागात्मिका भक्ति मिल जाती है तो फिर गुरु के बिना रहा नहीं जाता, सत्पुरुषों के सानिध्य के बिना, उनकी दीक्षा शिक्षा के बिना रहा नहीं जाएगा। संसारी को गुरु मंत्र मिला तो कभी जपेगा कभी नहीं जपेगा, लेकिन भक्त को मंत्र मिला तो जपे बिना नहीं रहेगा। साधारण आदमी मंत्र लेंगे, जपा कभी न जपा, फोटो के आगे अगरबत्ती करके माफी मांग लेंगे, लेकिन भक्त तो मंत्र जपेगा, कथा सुनेगा, सुनाएगा। साधारण आदमी मंत्र में, जप में, ध्यान में समय नहीं देगा, साधारण चीजों में समय देगा। साधारण चीजें संसार की होती है और साधारण आदमी संसार की चीजों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देगा, और भक्त की बुद्धि विकसित होती है वो भगवान और भगवान की भक्ति को ज्यादा महत्व देगा। ये होती है कि भक्त संसारी के बीच रहते हैं तो संसारी लोग उनको बोलेंगे ये क्या है। अगर कोई संसारी आ गया और भक्तों की भीड़ में बैठा, भक्तों की महफिल में बैठा, उसका सौभाग्य उसको रंग लग गया तो ठीक, नहीं तो उसका मन कूदेगा जाऊं देर हो गई। उसको पता नहीं कि सारी जिंदगी संसार में पचा है, अभी घड़ी भर मिल रही है कथा सत्संग, लेकिन वो चालू कथा में से उठकर अपना पुण्य नाश करके चला जाएगा। संसारी आदमी लक्ष्मी तिलक करने को आई, वो कीचड़ में मुंह धोने जाएगा। तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, अंदर में पाप होंगे वे हरि कथा सुनने नहीं देंगे, बैठने नहीं देंगे, खुजलाहट पैदा करेंगे। ऐसा आदमी डिस्को में जाएगा, ब्रांडी पार्टी में जाएगा, शादी पार्टी में जाएगा, या तो ताश खेलने में और रम्मी खेलने में, चौपर खेलने में घंटों भर बैठेगा वो आदमी, लेकिन सत्संग में नहीं बैठ सकता, क्योंकि उसका दुर्भाग्य उसको बैठने नहीं देगा। अगर सत्संग में बैठा रहे तो उसका दुर्भाग्य बदल जाएगा, वो पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पाप घने होंगे तो बैठने नहीं देंगे, जाने भी नहीं देंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनी हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना, जे नहीं करे ही राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समान। और संसारी से भी निपट निराले वे लोग होते हैं जो कथा में जाते तो नहीं, जाने वालों की मश्करी करते हैं, वे आसुरी भाव के लोग होते हैं, उनमें राक्षसी भाव का प्राधान्य है। ऐसे लोगों को तामसी खुराक प्रिय लगता है, तामसी संगति प्रिय लगती है, और तामसी कर्म प्रिय लगते हैं। उनको गीता ने कहा असुर, राक्षस वृत्ति के लोग। भगवान ने कहा विमुद्ध, वीआईपी कोटा के मूर्ख लोग। मनुष्य रूप में पशु ते भार भोई, मनुष्य रूपे मृगाश चरन्ति। शास्त्र ने कहा ये धरती पर बोझा है, मनुष्य के रूप में वे मृग है, द्विपाद पशु है। ऐसे पशु जब धरती पे अति हो जाते हैं तो फिर धरती बोझिली हो जाती है, भगवान को पुकारती है, फिर युद्ध, चेपी रोग, भूकंप या और कोई निमित्त बनाकर ऐसे पशुओं का सफाया होता है, कमी होती है। कौरव सौ पशु मर गए लेकिन पांच पांडवों में से एक भी नहीं गया। जय राम जी की। नारायण 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 नारायण। वो ऐसे लोग भक्तों की मजाक उड़ाएंगे। संसारी न भक्त होता है न पशु होता है, वो बीच का होता है। अगर पशु धर्मा लोगों का संग करेगा तो भक्ति में नहीं जुड़ेगा, और भक्तों का संग करेगा तो संसारी विकार पाप उसके कम होने लगेंगे, धीरे धीरे उसको भक्ति का प्रसाद मिलेगा, और उस प्रसाद से उस संसारी के भक्त के सारे दुख नष्ट होंगे। भगवान कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चित सोयासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। उस प्रसाद को पाने के बीच कई विघ्न आते हैं, अब क्या करूं। लोग ये बोलते हैं एक तरफ इस ये फर्ज है, एक तरफ भक्ति करना भी फर्ज है, एक साथ में दो फर्ज आ जाएगी। सेवा करना, भक्ति करना, ध्यान करना, ये भी फर्ज है, लेकिन घर का काम करना, शादी में जाना, ऐसा करना वैसा करना, झूठ बोल के पैसा कमाना, झूठ बोलकर संसार का घड़ा चलाना, ये भी फर्ज है। ऐसा उसके सामने दो फर्ज एक साथ में आएगी। अगर वो संसार को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है तो वो हल्की फर्ज को मुख्य इम्पोर्टेंस दे देगा, अगर भगवान को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है तो मुख्य फर्ज को मुख्य इम्पोर्टेंस देगा, गौणी फर्ज को गौणा इम्पोर्टेंस देगा। जैसे तुकाराम महाराज शादी करके आए, कमाना उनकी फर्ज है, पत्नी को पालना उनकी फर्ज है, वो जानते हैं, लेकिन भगवान को पाने के लिए तो मनुष्य जन्म मिला है, तो भगवान को पाना भी तो फर्ज है। तो उस संत ने मुख्य फर्ज स्वीकार कर ली, क्योंकि हृदय रागा भक्ति से अनुरागात्मी का भक्ति से हृदय पावन हो गया था, तो मुख्य फर्ज को मुख्य इम्पोर्टेंस दिया, भक्ति में ज्यादा लगे। फल क्या हुआ कि तुकाराम महाराज को समय ही नहीं मिलता खेत संभालने का, खेत में भी विट्ठल का गीत गाते हैं, पक्षी चारा चर जाते हैं। पार्टनरशिप में खेत बोते हैं तो गन्ने की पार्टनरशिप में ऐसी भक्ति में लगते हैं कि पार्टनर ने सब दगा करके गन्ने का एक बोझा दे दिया, लो ये है तुम्हारे हिस्से का। तुकाराम महाराज गन्ने का एक बोझा लेकर हिस्सा घर लौट रहे, रास्ते में देखा मंदिर में कीर्तन हो रहा है। अब कीर्तन हो रहा है तो घर कैसे अभी जाऊं, कीर्तन छोड़ के कैसे जाऊं, बोझा बाहर रख दिया गन्ने का। कीर्तन में सम्मत हो गए, कीर्तन में सम्मिलित हो गए। पुजारी ने देखा कि किसी ने गन्ने का भारा भेजा होगा भगवान के प्रसाद के लिए। पुजारी ने गन्ने का भारा उठवाकर उसको काट कूट के ठीक ठाक करके गंधेरी बना ली और एक गन्ना रख दिया कि जिसने भारा भेजा होगा उसको पूरे का पूरा गन्ना पकड़ा देंगे। कीर्तन पूरा हुआ और पुजारी की तरफ से घंटी बजी, ठाकुर जी को भोग लगा कि आज किसी दाता ने गन्ने भेजे हैं ठाकुर जी के चरणों में, गन्ने का प्रसाद बांटा। जांच किया भाई किसने भेजे हैं, तो तुकाराम ने कहा किसी ने भेजे नहीं है, उसी के हैं, उसने दिए थे घर ले जाने को, लेकिन उसने बता दिया कि वो घर गौण है, ये घर मुख्य है, इसलिए इस घर में मैं रुक गया। सही बात तो ये थी कि मेरे को उठा के बोझा ले जाना था, लेकिन ये मेरी खेत की कमाई पूरी इतनी ही मिली है, लेकिन ठीक है जो हुआ अच्छा सुंदर हुआ, ये ठाकुर जी की कृपा है। एक गन्ना लेकर घर गए। मिसिस तुकाराम पूछती है कि खेत में से हिस्सा मिला कहाँ है, बोले ये कैसे, बोले ऐसा ऐसा हुआ, आखिर में एक भारी मिली थी और मंदिर के बाहर रखी तो पुजारी ने समझा कि भगवान को भोग लगाने के लिए, तो पुजारी ने कृपा कर दी, भगवान ने स्वीकार कर लिया, भगवान के भक्तों तक पहुंच गया। माई चिढ़ गई कि भगवान का भगत आया, ये हिस्सा लाया, उठाकर गन्ना दे मारा जोर से धड़ाक दुम सिर पर, मोटा गन्ना था लाल, जोर से सिर पर दे मारा, सिर में चोट तो हुई लेकिन तुकाराम हंसता है कि वाह मेरा ठाकुर जी कितना दयालु है, वाह तेरे को कैसी मति दिया कि एक गन्ने के दो हिस्से, आधा तेरा आधा मेरा। ये भक्त अनुरागात्मिका भक्ति के रस से पावन है। परिस्थितियां तो दुखद है लेकिन उनके हृदय में दुख नहीं बनता है। परिस्थितियां तो कंगालित की है लेकिन उनके हृदय में कंगालित का दुख नहीं होता, क्योंकि वो समझते कि भगवान सारे विश्व का स्वामी है। ऐसा ऐश्वर्यमय सुख छोड़कर इन चीजों को कब तक संभालूंगा, रोटी तो उनको भी मिलती रहती। ऐसे लोगों का कोई विरोध करते तभी भी उनके चित्त में विरोधियों के प्रति द्वेष नहीं रहता, भले ऊपर से डांट दे लेकिन भीतर से द्वेष नहीं रहता। एक बार उनका कुप्रचार हो गया, कुप्रचार ऐसा हुआ कि जवान लोग तुकाराम से नफरत करने लगे और एक मौका देकर तुकाराम को घेर लिया, घेर के नाई बुलाया, तुकाराम का मुंडन करा दिया, बाल कटा दिए, दाढ़ी कटा दी, सिर पर हल्दी और चूना चौपड़ दिया और गधे पे बिठाया, लेकिन गधे पे बिठाया कैसे, सीधा नहीं, पूंछ के तरफ मुंह और सिर के तरफ पीठ उल्टा बिठाया। इससे भी उनको संतोष नहीं हुआ, गाजर और बैंगन ले आए, उसकी माला बनाई और तुकाराम के गले में थोप दी, पांच सिर गाजर और बैंगन की माला। इससे भी उनको संतोष नहीं हुआ, तुकाराम महाराज ने तो देखा कि भगवान की लीला है, क्योंकि मुख्य वृत्ति भगवान में है। जैसे पनिहारी घड़े पे घड़ा, घड़े पे घड़ा, उस पर घड़ा लेकर चलती है, मुख्य वृत्ति घड़े में है, गौणी वृत्ति से बातचीत करती जाती है, घड़ा नहीं गिरता क्योंकि मुख्य वृत्ति वहां है। जब मुख्य वृत्ति हट जाती है तो घड़ा गिर जाता है। ड्राइविंग करते हैं, बात करते रहते फिर भी एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि मुख्य वृत्ति ड्राइविंग में है, गौण वृत्ति से बात करता है। जब प्रेमी बैठा है, कोई हितेशी बैठा है, तो उससे मुख्य वृत्ति से भी उससे बात कर लिया तो टच हो गई गाड़ी, मुख्य वृत्ति वहां चल गई, जो मुख्य बैठा था गाड़ी में, तो गौणा काम गड़बड़ हो गया। फिर भी भगत सोचता कि चलो सूली में से काटा हुआ कोई बात नहीं, लथो बोझो बापा फिकर नहीं, कोई आना नहीं। तो महाराज मुख्य वृत्ति उसकी तुकाराम की भगवान में लगी थी, गौणी वृत्ति भी लगी थी। बैठे गधे पर अपमानित कर रहे हैं बच्चे होए होए करके, लेकिन तुकाराम महाराज ठाकुर जी को धन्यवाद दे रहे हैं, अनुराग आत्मिका भक्ति से रसमय हो रहे कि वाह प्रभु वाह वाह। लड़के देखते हैं इनको दुख नहीं होता, वो पापी लुफंगे लड़कों ने गली गली घुमाई। जब तुकाराम महाराज के घर से वो प्रोसेस निकला, शोभा यात्रा निकली, तो मिसेस तुकाराम हालांकि वो बहुत भी गाली सुनाती थी, लेकिन अभी अपने पति को गधे पे बैठे वो देखकर वो माई रो पड़ी। छोरों को बेलन दिखाया, मुआ नुपटा मुआ भरा, तुम काय कर तो ऐसा काय। छोरे भाग गए, तुकाराम जी को ले आए। वो जैसे ओवारा लेते हो माँ अथवा हितेशी, तुमको ऐसा लोग सताते तुम काय करते हो। तुकाराम बोलता, तू रोती क्यों है पगली, मैं सुखी हूं तू क्यों दुखी हो रही। लड़के कितने अच्छे हैं, इतने साल से रहते हैं, गांव पूरा घुमा नहीं था बेचारों ने, एक एक गली घुमाई है, कितना ठाकुर जी की कृपा है। और बोले गली घुमाई, ये मुंडन करा दिया एक, अरे बाल कटाने के पैसे तो ना ही इकड़े, उन्होंने मुंडन करा दिया। और गर्मियों के दिन है, कहीं फूड़ी फूसी हो तो हल्दी और चूना भी लगा दिया, अभी फूसी और कोड़ा भी नहीं होगा। बोले ये बैंगन का हार अपमान युक्त, जूते के हार की बराबरी जैसा हुआ, बैंगन का हार पहनाया जाता है। बोलते दाल खा के कितने दिन गुजर गए, पांच दिन साग चलेगा पगली, पांच दिन का साग घर बैठे मिल गया। मिसेस तुकार हम देखती रह जाती कि कौन है, ये मनुष्य है संसारी है, नहीं ये न मनुष्य है न संसारी है, ये तो अनुराग आत्मिका भक्ति से ऐसे हो गए कि भगवान रसमय दिखते हैं, बाकी सब संसार खिलौना दिखता है। ऐसे तुकाराम महाराज अनुराग आत्मिका भक्ति बढ़ गई। अब घर में मोहल्ले में क्या भजन करना, एकांत की मांग होती है, पर्वत पे जाकर भजन करते हैं। और मिसेस तुकाराम आटा पीसती है, किसी के घर का काम करती है। व्यवहार तो ये कहता है, उस जमाने में तो औरतें कमाती नहीं थी, मर्द ही कमाए और स्त्री को खिलाए, स्त्री घर काम करे। लेकिन तुकाराम की मिसेस को कमाना भी पड़ता था, क्योंकि तुकाराम इतने गहरे चले गए थे कि अब तू तू मैं उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। दो दो वस्तुओं को संभालना, एक प्यारे का रस पीना और दूसरा संसार का विष पीना, उनके लिए कठिन हो गया था। तो गौणी और मुख्य दोनों वृत्ति भगवान में लगा दी। मिसेस तुकाराम पहाड़ पर टिफिन ले जाती है, घर काम करना, मजदूरी करके कमाना और फिर पति खाए नहीं और पहले अपने खाना, ये तो लोग थू थू करेंगे। इस बहाने भी ज्वार की रोटी, सब्जी ग्वार की और ज्वार की रोटी लेकर पर्वत पर चढ़ी जा रही। कई दिन ऐसी यात्रा हुई, आखिर वो थकी, गाली गलौज तो निकालती थी। एक दिन तो भगवान के भक्त को तो सुनाती थी, आज भगवान को भी सुनाया जा रही कि इस काले कलुट ने मेरे पति को क्या कर दिया। जब शादी की तब ऐसा नहीं था, बड़ा अच्छा था, सुधरा हुआ था, क्योंकि उस समय वैदी भक्ति थी, फिर गौणी भक्ति हुई, फिर बढ़ते बढ़ते अनुराग आत्मिका भक्ति हो गई। अब तो भगवान में अनुराग हो गया, अब भगवान को गालियां देती, हे काला कलुट तू तो पंडरपुर में बैठा और मेरा घर इधर खराब कर दे, मेरे पति को क्या कर। तो जितना आदमी फरियाद करता है उतना उसके पैर भी फरियादात्मक चलते, तो पैर पछाड़ती जा रही, नंगे पैर चुभ रहे, कभी कभी कंकड़ कभी पत्थर, ऐसे यात्रा करती करती जा रही। एक ऐसी जगह है कि बावल का शूल घुस गया, भूखी थकी मांदी मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब भगत को वहां जठराग्नि प्रदीप हुई, भक्त की ज्वाला ने पुकार की कि अभी तक नहीं आई, पंडरपुर वाला कैसे चुप बैठ सकता है। वो भागा, कौन वो काला नटखटिया नारायण, भागा, उसको भागे बिना आप चैन नहीं पड़ी। भक्त की भूख उससे सही नहीं जाती, भक्त का अपमान उससे सहा नहीं जाता, वो भागा आया है। कहाँ आया है? तुकाराम की पत्नी जा बैठी वहां, जीजाई, जीजाई देखती कह रही तू फिर इधर आ गया, मेरे पास आया, अब मेरे को बिगाड़ेगा, मैं तेरा भजन नहीं करने वाली, बात तिकड़े जा, तिकड़े गो अवे, गेट आउट। वो मुस्कराता है, तेरे को तो कोई लाज नहीं, शर्म नहीं, तो हंसता रहता है। डांटती है फिर भी वो अपना गुण अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, क्योंकि कैसा भी है, कैसा भी डांटती, लेकिन मेरे भक्त की अर्धांगनी है, इसका कल्याण के बिना मैं वापस कैसे जाऊंगा। जी जाए डांट रही, वो डांट सह रहा है, फटकारती है, फटकार सह रहा है, मुस्कुरा रहा है, और चिढ़ती है, मुंह फेर देती है तो वो वहां जाके खड़ा हो जाता है, फिर दूसरी और मुंह करती तो वहां जाके खड़ा हो जाता है, तीसरी और मुंह घुमाती तो वहां जाके खड़ा होता है, चौथी और मुंह घुमाती तो वहां होके खड़ा होता है, वो घूमती जाती और वो भी जाकर घूमते घूमते उसके सामने खड़ा, जैसे चिढ़ती उसको और चिढ़ा रहा है। क्यों चिढ़ा रहा है? कि क्रांति के बिना शांति बचेगी नहीं, ऑपरेशन के बिना मरीज ठीक नहीं होगा। चिढ़ते चिढ़ते आखिर उसने आंखें बंद कर दी। जी जाए ने इधर से उधर, इधर से उधर, सामने खड़ा है, जा भाग, मैं नहीं देखती तेरे को। इनकार भी तो आमंत्रण देता है, आंखें बंद की, नहीं देखती नहीं देखती, इस बहाने भी चिंतन तो हो गया, आंखें बंद करती तो अंदर बैठा है, अंदर कैसे घुस गया बाहर निकल। लेकिन वो कहता कि जिसको एक बार मैं पकड़ लेता हूं, पूतना ने मुझे जहर पिलाया, उसका भी कल्याण किए बिना मैं नहीं रहा, तो तू तो मेरे भक्त को रोटी खिलाती है, तेरा अकल्याण कैसे होने दूंगा पगली। जो अपनी मुख्य फर्ज निभा रहा है, जीवात्मा परमात्मा के रास्ते चल रहा है, उसकी मुख्य फर्ज निभ रही है और गौणी फर्ज का बोझा तू उठा रही है, तो फिर तेरा बोझा तो मैंने ऐसे ही ले लिया। तू न बुला लेकिन मैं बिन बुलाए भी आता हूं। भगत के वश में है भगवान। कभी कभी बच्चा रोता है तभी माँ आती है, और बहुत देर तक अगर बच्चा रोता नहीं खाता नहीं तो माँ बिन बुलाए चिंता करती। माँ का स्वभाव है ऐसी, भगवान का भी स्वभाव है। कभी तुम भगवान को पुकारते, कभी हम भगवान को पुकारते नहीं, भजन नहीं करते, फिर भी ऐसा सत्संग का निमित्त, संत का निमित्त हो जाता है कि हमको भगवान के तरफ रस लग जाता है, समझो भगवान ने हमको बुलावा दिया है, भगवान की कृपा। घर बैठे कोई पुस्तक मिल गया, कोई कैसेट मिल गई, कोई भक्त का सानिध्य मिल गया, समझो हमको भगवान ने अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पैगाम दे दिया है। कितना दयालु। सुहृदम सर्वभूतानां, जिसकी गौणी भक्ति हो सिद्ध होती है, उसकी अनुरागात्मिका भक्ति प्रकट होती है, भगवान में अनुराग, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए वो फरियाद नहीं करेगा। प्रारंभिक वैदिक भक्ति वाला तो फरियाद करेगा कि मैं भगवान का इतना भजन करता हूँ, फिर भी मेरा बेटा मेरे कहने में नहीं है, तो तू बेटा कहने में चले इसलिए भजन करता है, भगवान की इतनी भक्ति किया और मेरा बेटे को ले लिया, तो तेरे बेटे में मोह फंसेगा, बेटे का कुछ आगे की यात्रा होनी होगी तो ले लिया, भगवान का कौन भजन करेगा, मेरा बेटा मार दिया भजन कौन करेगा, तो फिर संसार का गुलाम बन। श्री राम। भगवान ये समझाते हैं कि पहले तू लाया नहीं था बेटी को साथ में, बेटे को साथ में लाया नहीं था, ले नहीं जाएगा, बीच में मेरा दिया हुआ और तू अपना मानकर मेरे को भूल रहा है, चल मेरा दिया हुआ मैं अपने पास बुला लेता हूँ और तेरे को भी अपनी भक्ति का दान कर देता हूँ, तेरा बहाना मीठा लागे। फिर उस भगत की फरियाद नहीं धन्यवाद होता है, जो हो गया वाह वाह, तू जो करता है हित का करता है। एक मंत्री का स्वभाव था भला हुआ अच्छा हुआ, राजा के पास किसी ने तलवार भेंट में दी, राजा तलवार देखता है तलवार की धार, थोड़ी असावधानी हुई, उंगली कट गई, मंत्री के मुंह से निकल गया, अच्छा हुआ, भला हुआ। राजा बोलता व्हाट यू से, क्या बोलता है? बोलता अच्छा हुआ, भला हुआ। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता, मेरी उंगली कट गई, अच्छा और भला, इसको जेल में डाल दो। मंत्री के हाथ हथकड़ियां लग गई, कैदी बनाकर लाया गया राजा का आखिरी हुक्म। राजा पूछता क्यों, क्या हुआ? अब तो अच्छा हुआ। बोले बिल्कुल अच्छा हुआ, भला हुआ, भेज दीजिए जेल में। बोलता लगा दो उसको, जेल में डाल दो। कुछ दिनों के बाद राजा जंगल में गया शिकार करने को, उलझ गया था। जंगली लोग कहीं यज्ञ कर रहे थे, जंगली का मुखिया पुत्रेष्टि यज्ञ, उसमें किसी फालतू आदमी का बलि देना था। जंगल में जाओ कोई आदमी मिल जाए तो, वो कोई आदमी क्या, वही राजा मिल गया। जंगलियों के बीच वो आदमी राजा फंसा गया। उस राजा को पकड़ के ले गए, उसको जिलेबी खिलाई, स्नान कराया, जिलेबी खिलाई, हार पहनाया। अब उस चंडी के यज्ञ में उस राजा का सिर काट के डालना था। पुरानी कथा है। गौर महाराज ने कहा देखो उसका कोई अंग भंग तो नहीं है, शरीर कहीं से कटा कुटा तो नहीं है, अगर अंग भंग होगा तो अपना यज्ञ भंग हो जाएगा, फल पूरा नहीं मिलेगा। जांच करते देखा कि उंगली कटी हुई है, धत तेरे की, हमारी जिलेबी खा गया। थप्पड़ मारकर राजा को बरी कर दिया। राजा को वजीर की बात याद आई कि वारे वाह, भला हुआ, अच्छा हुआ, अगर उंगली नहीं कटती तो आज ये नारियल होम हो जाता, हवन हो जाता इस नारियल का। वजीर के लिए राजा के दिल में मान पैदा हुआ। जाते ही आदेश दे दिया कि मैं नहा धोकर मन आ जाऊं दरबार में। उसी वक्त मंत्री को वस्त्र अलंकार आदि से बड़े मान से शान शौकत से मेरे सामने लाया जाए। मंत्री के बंधन खुले हो गए, मंत्री आ गए राजा के सामने। राजा ने कहा कि मुझे उंगली पर तलवार का लग गया जर्क, उस समय तुमने बोला अच्छा हुआ भला हुआ, वो बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन तेरे को हथकड़ियां पड़ी उसमें क्या भला हुआ, क्या अच्छा हुआ? मंत्री बोलता है महाराज ये तो सीधा गणित है, मैं तो आपका खास आदमी था, आपके साथ ही रहता था, आप अगर जंगल में गए तो मैं साथ में रोज होता हूँ, आप उलझे तो मैं भी उलझ जाता, हम दोनों को पकड़ जाते, और आपकी तो उंगली कटी थी आपको छोड़ देते, मेरा नारियल धर देते वहां। जिस समय घटना घटित होती है उस समय पता नहीं चलता कि अच्छा हुआ, लेकिन गहराई से देखो कि जो होता है, जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि भगवान सुहृद है, हमारे परम हितेशी है। ऐसी बात भगत को समझ में आ जाती है, संसारी को नहीं आती है। संसारी को नहीं आती तो रो रो के फिर उसको आती, जयराम जी की, रो रो के भी लानी पड़ती है, जाएगा कहाँ बेटा, रो रो के भी आएगी, रो रो के कई लोग मर भी जाते हैं, मेरा बेटा मर गया इसलिए मैं आत्महत्या करता हूँ, गंगा में डूबा, घाट वाले बाबा के आदमी ने पकड़ा, रहा क्यों मर रहा है, मेरा बेटा मर गया इसलिए मैं मर रहा हूँ। अरे पागल, उसके लिए तू रोएगा और मरेगा तो उसको दुख होगा, बैठ सत्संग सुन, बदल गया आदमी, तो ये भी तो उसकी व्यवस्था है। अब मैं जीजाई को ज्यादा देर कांटा चुभने की पीड़ा नहीं देना चाहता हूँ, चलो जीजाई के वहां चलते अपन। जीजाई के अंतःकरण में भगवान दिख रहे हैं, वो डांट रही है। भगवान ने देखा अब इसको ज्यादा क्यों बिचारे को उछल कूद करने देना। भगवान ने अपना वात्सल्य भरा हाथ उसके सिर पर रखा है, उसके विचार बदले हैं, पैर पर पैर रखकर कांटा खींच लिया है, नस को प्रेशर करके रक्त बंद कर दिया है, पैर को भगवान छू रहे हैं, उनको कोई संग नहीं, मेरे भक्त की मिसिस है ना, भक्त के तो झूठे बैर खाते, लेकिन भक्त की अर्धांगनी के पैर का कांटा निकालने में भगवान उसके पैर को स्पर्श करने में संकोच नहीं महरूम करते। है कोई दुनिया का ऐसा सेठ, है कोई दुनिया का ऐसा कोई सत्ताधारी, सत्ताधारी कि गाली देने वाले के भी पैर की पीड़ा दूर करने के लिए अपना ऐश्वर्य का भाव छोड़ दे, अपनी सत्ता की तरफ न देखे। गुस्से में आके हार्ट फेल भी तो कर सकते थे, तमाचा भी तो मार सकते थे, लेकिन भगवान सुहृद है। जिसको जैसी जरूरत होती, शिशुपाल को जरूरत थी तमाचे की, रावण को जरूरत थी, जिसको जो जरूरत थी वो वही देता है, और जिसकी जैसी मांग होती है और जैसी जरूरत होती है उसको वैसा ही मिलता है। कर्मों के अनुसार मांग बनती है, मांग के अनुसार कर्म बनते हैं। जयराम जी की मांग है ईश्वर को पाने की, तो कर्म दान के होंगे, पुण्य के होंगे, सेवा के होंगे। मांग है संसार में सुखी रहने की, तो संसारी चीजों के लिए दान पुण्य होगा, ईश्वर के लिए नहीं होगा। मांग है बड़ा कहलाने की, तो जो नेता वेता लोग हैं उनकी इसकी उसकी उसकी बराबर खुशामत ये वो करके अपना सर्टिफिकेट लेकर घूमेंगे, देखो मेरे को इतने इतने लोग जानते हैं। आपकी जैसी मांग होगी ऐसे कर्म होंगे। हृदय में अगर मांग भगवान की है तो कर्म सत्संग में जाने के होंगे। महाराज जीजाई की मांग नहीं है, लेकिन जीजाई के मिस्टर की मांग तो है। जीजाई को बोलते चल भूख लगी मेरे भक्त को, चल टिफिन ले। चलते चलते पहाड़ लांगते लांगते ऊपर पहुंचे चोटी की तरफ। तुकाराम हाथ की छाजली बनाकर देख रहे कि अभी तक नहीं आए। बड़ी मुश्किल से देखी कि वो जीजाई तो आ रही है, लेकिन साथ में विट्ठल। तुकाराम को भरोसा नहीं हुआ, ये कैसा रवि रजनी एक साथ। रजनी रात्रि को बोलते हैं, रवि प्रकाश को बोलते हैं। मेरी पत्नी तो है दिन रात सुनाने वाली, उसके साथ विट्ठल। मैं धोखा तो नहीं खा रहा हूं, दोपहर के 12-1-2 बजे ऐसे प्रकाश में मैं क्या देख रहा हूं? भरोसा नहीं रहा अपनी आंखों पर, पानी छिटक के देखते कि अरे विट्ठल इसके साथ। आखिर विट्ठल और जीजाए पहुंचते। तुकाराम कहता कि प्रभु आप इसके साथ? बोले क्यों, क्या बात? जब तू मुख्य फर्ज पालता है तो भगवान भी तो भक्तों की रक्षा करने की अपनी फर्ज क्यों भूलेगा? मैं भी तो अपनी फर्ज पाल रहा हूं, मैं भी अपना कर्तव्य पाल रहा हूं। मुझे भक्त बहुत प्यारे होते, भक्त की भूख मेरी भूख है। अब लौकिक नजर से देखा जाए तो तुकाराम का तो कल्याण हो गया, लेकिन तुकाराम मुख्य फर्ज पालने लगे तो उनकी गौरवी फर्ज पत्नी ने उठा ली, तो पत्नी का भी कल्याण हो गया और तुकाराम महाराज लाखों आदमी के तारणहार हुए। तुकाराम के पास फिर भगवान की श्री रहने लगी। बाहर से कुछ नहीं, लेकिन संकल्प करे तो वस्तुएं तैयार हो जाए। शिवाजी महाराज दर्शन करने जा रहा है, नौता भेजा कि आज्ञा मिल जाए गुरु की, दर्शन करना है। बोले अभी 2 मील दूर है, वहीं ठहरो, दोपहर हो गई है, कितने लोग भोजन स्वयं बना के खा सकते हैं जो दूसरे के हाथ का नहीं खाते हैं, वैसे कितने लोग हैं और बना बनाया कितने लोग खाते हैं, घोड़े कितने, हाथी कितने, पैदल कितने। जाओ, नौकर को बोला पूछ क्या हो। घोड़े सवार गया तुकाराम के पास, वो शिवाजी के पास। शिवाजी ने कहा तो संत आदमी, उनका झोंपड़ा टूटा फूटा, करताले भी पत्थर की, अब उनसे क्या अपने भोजन लेना, जो एक मुट्ठी दो मुट्ठी दे दे लाओ अपने भंडार में डालकर उन्हीं का समझ के खाएंगे। घोड़ेसवार जाता है वापस, महाराज आप जो देते हो मेरे बन, मेरी झोली में 2 मुट्ठी दे दो। तो कराम बोलते तुमने आने में देर किया है, जहां तुमने छावनी डाली अपनी उसके ठीक दाएं हाथ पर थोड़ा सा आगे जाओगे, मंडप तैयार है, भोजन तैयार है और सीधा भी तैयार है, हाथियों के लिए चारा भी है, घोड़ों के लिए चारा भी है और विश्राम की जगह भी है। जैसे भरद्वाज ने भरत के लिए बना दिया संकल्प से, ऐसे तुकाराम महाराज ने संकल्प से व्यवस्था कर दी। भोजन किया, पान बीड़ा खाया, आराम किया। शाम को जब दर्शन करने आया है शिवाजी महाराज, तुकाराम से पूछता कि प्रभु ये क्या है? तुकाराम बोलते मेरा झोपड़े में तो चंद्रमा की चांदनी आती और बरसात की बूंदे आती, इतना मेरा झोपड़ा गरीबी का है। पास में कोड़ी नहीं रखता, मंजीरे भी पत्थर के हैं। अभंग गाकर तुकाराम ने सुना है, लेकिन सारे विश्व के जो धनाढ्य हैं, वो जिस लक्ष्मी के दास हैं, लक्ष्मीपति जो सेठ है ना धनाढ्य, वो लक्ष्मी के दास है और लक्ष्मी जिसकी दासी है उस स्वामी की कुंजियां मेरे पास रहती है। बोलो क्या बात, कितनी शक्ति है भक्ति की। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए, अति कामी अति क्रोधी अति लोभी अति मोही, इनसे भक्ति न होए। और यह अगर करेंगे तो मोह नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। मोह की जगह पर प्रेम होगा, काम की जगह पर राम आ जाएगा, अहम की जगह पर नम्रता आ जाएगी। भक्ति स्वयं फल रूपा है, रस रूपा है, और वो भक्ति आगे बढ़कर फिर अहंग्रह उपासना में चली जाती अथवा निर्गुण रूप ले लेती है। निर्गुण रोटी सबसे मोटी, उसका भोग लगाता है। फिर भक्त को भक्ति नहीं करनी पड़ती, उसका जो कुछ होता है वो भक्ति बन जाता है। कभी ताना बुनते तो भक्ति हो जाता है। और संसारी आदमी जुलाह करके हमें भी ताना बुनिए से हमें एक आपड़ बनाए, जन कबीर एक आपड़ बनावता था, कबीर ने हमें बराबर छे, अजी तू बाबलो छे। कबीर जो भी करते हैं, कपड़ा बुनते हैं हाथों से, वो भी उनकी भक्ति हो जाती। साधो भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। कानन रूंधू आंखन मूंदू, कानन रूंधू काया काष्टन धारू, खुली आंख में हंसस पेखू, सुंदर रूप निहारू, सब मेरा ईश्वर है। पक्षियों में किलोल करने वाला तू ही है, वृक्षों में पोषण करने की सत्ता तेरी है, बच्चों में तुतली भाषा बोलकर माँ बाप की थकान तू ही तो मिटाता है, और माँ बाप में पोषण की भावना देकर तू ही तो पूछता है, पिता में अनुशासन तू ही तो कर रहा है, माता में वात्सल्य तू ही तो दे रहा है। खुली आंख उसकी समाधि, सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरूं फरूं सो करूं परकर्मा, सोऊं तब करूं दंडवत, भावन राखूं दूजा, साधु भाई सहज समाधि भली। हलो तो हली दरिया वेखूं, दरिया मिले लहरूं, लहरन जो लाल भी तू, तेरा मकान आला जित कित वसी तो तू। हलो तो हली आसमान वेखूं, चलो तो जरा आसमान देखे, चलो तो जरा आसमान जो ये आकाश जो ये। हलो तो हली आसमान वेखूं, अज्ञा हली पसूं, आसमान बिड़े तारा, तारन जो चंड भी तू, तेरा मकान आला जित कित वसी तो तू। हलो तो हली किस्ती वेखूं, अग्या हली पसूं, किस्ती में मिड़े राहिब, राहिब जो रब भी तू, तेरा मकान आला जित कित वसी तो तू। हलो तो हली बाजार वेखूं, अग्या हली पसूं, बाजार में मिड़े राहिब, बाजार में सब राहगीर होते हैं, बाजार में मिले राहिब, राहिब जो रब भी तू, तेरा मकान आला जित कित वसी तो तू। हलो तो हली सत्संगी वेखूं, अज्ञा हली पसूं, सत्संगी जो सत भी तू, तेरा मकान आला जित कित वसी तो तू। उसके लिए फिर खुली आंख समाधि है। लेकिन जो वैदी भक्ति नहीं करते, गौणी भक्ति नहीं करते, तो सीधा सब में तू है तो ऐसा करके फिर वो सब में तू है तो फिर खाओ पियो मजे करो, समाधि संभोग से समाधि उधर गिर पड़ते बिचारे। जय राम जी की। क्योंकि फाउंडेशन नहीं है, पूरा छत की बात कर रहे हैं, तो बिना फाउंडेशन के छत कैसे ठहरेगी। इसलिए वो बेचारे उलझ जाते हैं। बात तो सिद्धांत की करते हैं, सब में भगवान है, बिल्कुल सब में भगवान है, लेकिन विकार को पोष के सब में भगवान बोलोगे तो टिकेगा नहीं। इसलिए वैदी भक्ति, नियम नीति सदाचार सत्कर्म, फिर गौणी भक्ति, फिर रागा भक्ति, पार हो गया। ओम शांति शांति। तो प्रकट हुआ नहीं, अपने को मान लिया हम फलाने के शिष्य है, फलाने पंथ के, इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे अंदर में भगवान का रस प्रकट होना चाहिए। श्री राम। ओ भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो यज्ञ और तपसा का भोक्ता है उसी को भोग लगाना। सर्वलोक महेश्वर है, उसी के निमित्त आज रहना, कल का दिन रहना, परसों का दिन रहना, फिर यहां से कभी मत जाना। कि सही सदा इधर रहना पड़ेगा क्या? हाँ, यहाँ के रस को अगर पचा लिया तो तुम सदा इधर ही हो। यहाँ जो रस हम देना चाहते हैं, आपको जो हम अनुभव कराना चाहते हैं उसमें अगर आप इधर लग गए और बाद में लगे रहे तो फिर आप इधर ही हैं। आपके श्लोक का पाठ करने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से और साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। साधु किसे कहते हैं, ऐसा सवाल अर्जुन के चित्त में उठा है। स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवः। स्थिति प्रज्ञ पुरुष कैसे रहता है, उसका कैसा आचरण होता है, वो बोलते कैसा है, वो चलता कैसा है, वो लेता देता कैसा है, बैठता कैसा है, उठता कैसा है। तो भगवान ने प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मैव आत्मनः तुष्टः स्थिति प्रज्ञस्त दोचते करते हुए भिन्न भिन्न उस महापुरुषों के लक्षण बताए, जो वैदी भक्ति, गौणी भक्ति, रसयात्मक भक्ति से भी पार ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं। और ये जरूरी नहीं कि हर ब्रह्मज्ञानी के जीवन में तुकाराम की नाई, भोजन सामग्री तैयार करने की रुचि और हो, ये जरूरी नहीं। ये जो चमत्कार होते हैं तुकाराम जी महापुरुष के जीवन में या मीरा के जीवन में या और किसी संत महापुरुषों के जीवन में, तो भक्ति प्रधान संतों के जीवन में जो चमत्कार होते हैं वो भगवान की लीला है, भक्त का भाव संपन्न हो जाता है। योग प्रधान किसी पुरुष के जीवन में अगर कुछ अलौकिक घटना घटती है तो ये योग सिद्धियों की शक्ति है। और ब्रह्मवेता ब्रह्मज्ञानी के जीवन में ऐसा कुछ होता है तो प्रकृति अपने आप लीला कर लेती है। उच्च कोटि का भक्त, उच्च कोटि का योगी और उच्च कोटि का ज्ञानी कभी इन उपलब्धियों को मेरी नहीं मानता, कभी इन उपलब्धियों से अपने को बड़ा नहीं मानता और कभी इन उपलब्धियों के लिए वो भजन योग या साध तत्व ज्ञान नहीं पाता, अपितु ये उपलब्धियां हो जाती तो हो जाती है, नहीं भी हुई तो भक्त को आकांक्षा नहीं रहती। स्थिति प्रज्ञ पुरुष को इन चीजों से कोई लगाव नहीं रहता। प्रज्ञाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जिसकी मन से सारी कामनाएं मिट गई। मन से कामनाएं मिटने पर इतना आदमी महान होता है कि उसका बयान करते करते शास्त्र वेद थक जाते, उसकी महानता का कोई पार नहीं। आदमी तब तक छोटा होता है जब तक उसमें कामनाएं भरी है। जितनी जितनी कामनाएं उसकी क्षीण होती जाती उतना उतना वो निष्काम नारायण स्वरूप में एक रस होने लगता है। चाह चमारी चुहरी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाहन होती बीच। तो कुछ कामनाएं ऐसी होती है जो आदमी को अच्छे रास्ते लगाती है और कुछ कामनाएं ऐसी होती जो बुरे रास्ते लगाती है। तो बुरे रास्ते की अपेक्षा अच्छे रास्ते लगाने वाली कामनाएं ठीक है, लेकिन आगे चल के अच्छा और बुरा ये दोनों छूट जाता है। आदमी जब पूर्ण निष्काम होता है तो अच्छे में अच्छा जो परब्रह्म परमात्मा स्वभाव है वो उसका जागृत हो जाता है। और उस परमात्मा स्वभाव में जब आदमी जग जाता है तो उसके लिए प्रकृति का हो, भगवान की लीला का हो, योग की शक्तियां का हो, उसके अनुकूल हो जाती। जैसे राज्य सिंहासन मिलने पर राज्य की सुविधाएं, नौकर चाकर सब अपने राजा के इर्द गिर्द अपने को अच्छा कहलाने के लिए लग जाते हैं या करते हैं अपनी ड्यूटी समझकर। ऐसे तुम अगर निष्काम हो जाते हो तो बाकी का कार्य प्रकृति और प्रकृति के अनुचर सब करने लगेंगे, फिर जो होना चाहिए वो होने लगेगा और जो नहीं होना चाहिए वो रुकने लगेगा। ऐसे पुरुष के नजीक बैठने से हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को भी लाभ मिलता है। जो होना चाहिए ऐसा भाव लाखों आदमी एक निष्काम पूर्ण निष्काम ब्रह्मवेता अगर हमारे बीच बैठा है तो हम व्यर्थ की गपशप नहीं कर सकते हैं। हम उस ब्रह्मवेता महापुरुष के निकट बैठे हैं तो व्यर्थ का इधर उधर झांक नहीं सकते, व्यर्थ का हम खा नहीं सकते और व्यर्थ का हम पी नहीं सकते, और हम अनायास ही एक दो घंटा तीन घंटा उनके हाजिरी में संयमी हो जाते हैं। बिना मेहनत अपने आप तीन घंटा चुप बैठो तो मुश्किल हो जाएगा, अपने आप तीन घंटा खाओ पियो इधर उधर करो तो इंद्रियों के झपेटे में आ जाओगे, लेकिन उन महापुरुषों के चरणों में बैठने से दो तीन घंटा तो इंद्रियों में जीने वाला आदमी भी संयमी हो जाता है। तो भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि यह निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। संपूर्ण मनुष्यों की जो रात्रि है उसमें संयमी मनुष्य जगता है, और जिसमें साधारण मनुष्य जगते हैं वह तत्ववेता को वह तत्व को जानने वाला मुनि की दृष्टि में वह रात्रि हो जाती है। जिस खान पान में भोगने में लेने में देने में संग्रह करने में बदला लेने में साधारण आदमी सजाग है उन चीजों में मुनि सोता रहता है, कोई बात नहीं हो गया, कोई बात नहीं, क्या चाहिए कुछ नहीं चाहिए कोई बात नहीं। और जिस परमात्मा को छोड़कर संसारी लोग परमात्मा के विषय में तत्वों के विषय में उनको कोई पता ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं, जिसमें संसारी लोग सो रहे हैं उस आत्म परमात्मा के ज्ञान में मुनि जगता है, और जिसमें संसारी लोग खूब सतर्क हैं सावधान हैं रुपया में पैसा में लेने में देने में बदला लेने में दोस्तों से राजी रखने में वार त्योहार को संभालने में वारा तारा ये वो सब, उसमें वो ब्रह्मवेता उदासीन है, और जिसमें संसारी लोग उदासीन है उसमें वो ब्रह्मवेता जगता है। या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां या निशा तस्याम जाग्रति संयमी तस्याम जाग्रति संयमी तस्याम जाग्रति संयमी। यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने सा निशा पश्यतो सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण मनुष्यों की जो रात्रि है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें साधारण मनुष्य जागता है कुशलता रखता है उन बातों में तत्ववेता तत्व को जानने वाला मुनि की दृष्टि में वह रात्रि है। सारा संसार अविद्या से बना है, सपने जैसा है, जेम स्वप्नानी वस्तु लेने कोई जागी शके नहीं तेम संसार ना राग द्वेष ने पकड़ी ने कोई आत्म परमात्मा ने पामी शके नहीं। स्वप्ने हो भिखारी निरपरंक नाकपति हो जागे लाभ न हानि कछुतिम प्रपंच जिय जग सो। जैसे स्वप्न रैन का तैसा ये संसार, जागो लोको मत सुओ ना करो नींद से प्यार। जैसे स्वप्न रैन का तैसा ये संसार, आंख खुलने से ही आदमी जगता है ऐसी बात नहीं, आंख खुलने से तो शरीर जगता है लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने से आदमी जगता है अन्यथा से। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोव नहारा, देख ही स्वप्ने अनेक प्रकारा। ये मोह की रात्रि में सब लोग सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्ने देख रहे हैं। जिस शरीर में जाते हैं, जन्म लेते हैं, उस बच्चे को तो पता नहीं, घर वाले खुशियां मनाते हैं, बेटे का जन्म हुआ है। एक साधक ने गुरु को खत लिखा कि बाबा जी, मेरे घर बेटे का जन्म हुआ। बाबा जी साधक के जीवन में ब्रह्मज्ञान लाना चाहते थे। बाबा जी ने कहा, तू झूठ बोलना कब से सीखा है? तारा घरे बेटा नो जन्म थयो छे, तद्दन खोटी बात छे, झूठू बोले छे। ते छोकरो परणेलो, छोकरो दीकरानो बाप थयेलो लौकिक जग रीते, पण एने खबर नहीं कि गुरु महाराज मने लौकिक निशा माथी जागृत करी अने अलौकिक तत्व में जगाड़वा माटे आ उत्तर आपे छे कि बापू, हूँ जूठू नहीं बोलतो, ने संतनी आगळ जूठू बोलवाथी तो महापाप लागे। हूँ हवे मारा घरे दीकरानो जन्म थयो छे। बापू कीधु, जूठी बात छे, दीकरा ने खबर ज नहीं कि दीकरानो जन्म थयो छे। बेटे को पता ही नहीं कि मेरा जन्म हुआ है। दीकरा आने से बाप का जन्म हुआ, उसके पहले तुझे कोई बाप नहीं कह सकता था, अब तू फलाने का बाप हो गया।